Srimad Bhagavatam, Bhagavan Vedavyas Krit, Anuvad, Sanskrit se Angrezi, Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ke Dwara, or Tatparya Srila Prabhupada ke Dwara, Skand 3, Adhyay Tara, Shlok Cha, Che. Maitreya Uvacha, Yada Svabharyaya Sardhang Jata Svayambhuvo Munehe Pranjali Pranatascedang Vedagarbham Abharshata. Sri Maitreya Muni Ne Vidurse Kaha Manav Jati Ke Pita Manu Apni Patni Samet Apne Prakartya Ke Bad Ved Vidya Ke Agar Brahma Ko Namaskar Karke Tata Hat Jarka Jarka Isprakha Bole Shlok Sat Tvam Ekaha Sarva Bhutanam Janma Krit Vritti Daha Pita Tata Api Naha Prajanam Te Susrusha Kena Va Bhavet Twameka Sarva Bhutanam Janma Krit Vritida Pita Tatapi Naf Prajanam Te Susrusha Kena Va Bhavet Twameka Sarva Bhutanam Janma Krit Vritida Pita Tatapi Naf Prajanam Te Susrusha Kena Va Bhavet.
Prajanam te
Shu
शुश्रूषा केन वा भवेत्
त्वमेकः सर्वभूतानां
जन्म कृत्पिता
देव्यों Twam Aap Ekaha Ek Sarva Samasta Bhutanam Jivonke Janma Krit Janak Vritti Daha Jivika Ke Sadhan Pita, Tata, Api, Tobhi, Naha, Ham, Prajanam, Utpan Hue Sabonka, Te, Apki, Susrusha, Seva, Kena, Kaise Va Atava Bhavet Sambhav Ho Sakti Hai. Aap Sare Jeevon Ke Pita Tata Unki Jivika Ke Shrot Hai. Kyonki Ve Sabhi Aap Se Utpan Hue Hai. Kripa Karke Hame Adesh De कि हम आपकी सेवा किस तरह कर सकते हैं तत्पर पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता को केवल अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में उपयोग न करे अपितु जब वह बड़ा हो जाए तो वह उसकी सेवा भी करे यही ब्रह्मा के समय से सृष्टि का नियम चला आ रहा है पिता का कर्तव्य है कि जब तक पुत्र बड़ा न हो जाए उसका पालन पोषण करे और जब पुत्र बड़ा हो जाए तो पुत्र का कर्तव्य है कि वह पिता की सेवा करे Om Agyana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Shrestham Manum Api Shachiputram Atrasvarupam Rupam Tasyagram Urupurim Maturim Goshtavartim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tamnatosmi Vandeham Shri Guru Shri Yatav Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagradatam Sahagarna Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakha Guru Vaishnava Bhagavan Tine Swarani Hoi Bhikna Binashan Anayasi Hoi Nijavan Chita Puran Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Manu Maharaj, apne pita Shri Brahma ji kehte hai ki aap sare jeevon ke pita tatha unki jivika ke shrut hai. Kyunki ve sabhi aap se utpann hue hai. Vachan satya hai ki nahi? Sat, sach hai. Sampurna satya nahi. Kyunki sarva karan ke karan hai Shri Krishna. Iske pahele dvitiya skand mein Narad jo bhi Brahma ji ka putra hai, manas putra. Brahma ji ko bataya ki aap sarva shreshta hai. Aap ke alawa hum nahi dekhte koi dusra srishti karta, sab kuch aap se utpanna hote hai. Uttar mein Brahma ji ne kaha, nahi, aise nahi hai. Mujh ke alawa koi dusre nahi dekhte, lekin hai. Avyakt Parampurush Bhagavan Narayan ka nabhi, Padmanab ka nabhi se mera janma hua. Aur unse me shakti sancharit hota hai jisse me pura brahmand ki srishti kar sakta hun. Pura jagat ki srishti brahma nahi karte. Brahmand, ek brahmand ki srishti. Ek jagat me anek brahmand hai. Aur brahma ji ek Brahmand me srishti karta hote hai. Kis prakar Bhagavan Narayan se shakti prapt karne se. So manu jo kehte hai wo sahi hai, sach hai. Parantu samajna chahiye ki Brahma यह ब्रह्मांड में मुख्य जीव होते हुए भी, बहुत शक्तिशाली होते हुए भी, ब्रह्मा भी भगवान नारायण का पुत्र है, सेवक है, भगवान नारायण का आदेश और इच्छा के अनुसार सृष्टि ki rachana karte hai aur phir bhi Brahma ji ko yatharth yathochit sanman dena chahiye. Tule mein Bhagavan Narayan ki sthiti aur Bhagavan Brahma, kabhi kabhi Brahma, Shiv, ये सब महान महान व्यक्तियों को भगवान भी बोलते हैं, क्योंकि वे महान हैं. परंतु ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सूर्य इत्यादि देवताओं की पद और परिस्थिति भगवान नारायण की तुलने में नहीं आते हैं. वे सब बहुत तुच्छ हैं. They say sab jeev bahut tuch hai. Narayan mahan hai. Ve vibhu hai. Vibhu ka arth mahan. Sarva shaktiman. Or jeev ka varnan hai anu. Bahut 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 chote hai. To phir bhi मानव समाज में और देवता समाज में तारतम्य है और सभ्यता का एक मुख्य लक्षण है. तारतम्य के अनुसार मर्यादा रखना असभ्यता का एक मुख्य लक्षण है कि वो तारतम्य ग्रहण नहीं करना और सबको समान बोलना, ऊंच नीच ये विचार नहीं रखते. वो बोलते सब समान ही है. तो एक दृष्टिकोण से सब व्यक्ति सब जीव समान है. जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः. कौन है पंडित? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण. समाज में, मानव समाज में श्रेष्ठ पद में आते हैं विद्या और नम्रता संपन्न का ब्राह्मण और सबसे नीचे श्वपाकी जो कुत्ता का मांस पाक करते हैं और खाते हैं. वो सबसे नीचे मानव समाज में वो द्विपदु पशु है, मानव रूपी पशु है. और मानव समाज के बाहर अन्य जीव जाति है जिसमें हस्तिनी, हस्ती और हस्तिनी है, गाय इत्यादि. जो पंडित है, जो आत्मा साक्षात्कार किया है, देखते हैं कि आध्यात्मिक रूप से सब समान है क्योंकि वो सब जीव है. एक जीव वर्तमान काल में विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो सकते है, दूसरा जीव हस्ती या हस्तिनी का शरीर धारण करते हैं, तीसरा है श्वपाकी असभ्य मानव रूप धारण करते हैं और कीट कृमि पतंग सांप गोसाप पक्षी पैर ब्रह्मा इंद्र चंद्र बहुत रूप है, बहुत भौतिक प्रकृति से बनाए हुए रूप है, ब्रह्मा जी से बनाए हुए रूप है. परंतु सब बुद्धिमान, सब चेतनमय अभिव्यक्ति, सब प्राणी एक जीव है और उनका मूल स्वभाव कृष्णदास, जीवस्वरूप है कृष्ण नित्य दास. और सबका मूल स्वभाव वैसे है, भौतिक प्रकृति से आच्छादित है, इसलिए निज कर्म फल के अनुसार एक है देव का रूप में, दूसरा दैत्य के रूप में है, परंतु सब जीव है. तो इस प्रकार सब जो पंडित है देखते हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सब कुछ देखते हैं, जानते हैं कि सब एक ही है, सबका एक ही पद है, परंतु अभी वर्तमान काल में भिन्न भिन्न स्तर पर है, भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं, तो वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। और व्यवहारिक भौतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और स्वपाकी एक ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया कि वो जैसे ओ ये गांव के पास विशेषकर रात को एक चीटा घूमता है, रात को खास चीटा घूमता है, तो वो अगर हम चीटे को देखेंगे हम क्या वो आगे जाएंगे उसको आलिंगन करने के लिए क्या? श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिए थे एक व्याघ्र अगर हो तो हम व्याघ्र को आलिंगन नहीं करेंगे। व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, सब एक ही नहीं है, एक ही है मूल स्वभाव से सब एक ही है, और वर्तमान स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, और जब तक हम भौतिक संसार में है तब तक वो भौतिक संसारिक नियमों के अनुसार हमें कार्य और व्यवहार करना चाहिए। इस विषय के बारे में एक कहानी है, लगता है सही नहीं है लेकिन एक विषय प्रकट करने के लिए उपयोगी है कि एक शिष्य गुरु का आश्रम में था और गुरु से शिक्षा मिली कि सब जीव एक है, गुरु मायावादी था, सब जीव एक है, सत्य एक है, सब ब्रह्मन ही है। तो वो शिष्य वो बात सुनकर कुछ दिन के बाद और आश्रम से किसी कार्य करने के लिए नज़दीक गांव गया है जिसमें बाजार था, और सब जो अपने अपने काम करते थे बाजार में, और अचानक बहुत बड़ा झमेला हुआ और सब लोग रोने लगे, भाग जाओ भाग जाओ, माता हस्ती पागल हाथी आ रहा है। तो शिष्य सोच रहा था कि ओ हाथी मैं भी ब्राह्मण हूँ, वो हाथी भी ब्राह्मण है, तो इसलिए निर्भय रास्ते के बीच में खड़े रहा, और वो पागल हाथी आकर वो उसको क्या बोलते हैं तो उसको क्या बोल उड़ा दिया और फेंक दिया एक पास में, और बहुत कष्ट में पूरा शरीर पर चोट लगे और बहुत कष्ट से वापस गया और आश्रम, और गुरु को बताया कि वो मैं ब्राह्मण हूँ, आप ब्राह्मण है, हाथी भी ब्राह्मण है, तो क्यों वो क्यों ब्राह्मण एक दूसरा ब्राह्मण को वैसे किया? और गुरु ने कहा कि तुम नहीं सुने कि वो क्या बोलते हैं महूत जो है आपको महूत जो Hatika Gardan Maita do Nesanaki or Sablok Balte Bag Bagjao Bagjao or Sub Brahman Jo Bal Waisai Balte or Sub Brahman Kavacha Nehisuna Abhid Abhid Vani Abhid Siddhant Mayavadi Onka Ve Balte Ki Ekam satya. Satya to kali eki hai. Param satya hai. Vyavaharik satya bhi hai. Balte ki vyavaharik satya hai ki sab kuch bhinna bhinna hai. To yadi sab kuch ek hai, to kai se satya mein bhed ho sakte. Wo ek prashna hai. Vastavik satya or vyavaharik satya. Or ek prakar or satya ve balte kya naam hai ya abhi yaad nahi hai o swapne mein jo hum dekhte hain pratibhashik abhi yaad nahi hai to gita aur bhagavat mein ye sab adhyatmik gyan jo hai sukshma gyan hai sab log yogya nahi hai wo sab kuch समझने के लिए परंतु ये श्लोक में वो शिक्षा जो है वो विशेष का आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान है और सब लोग जो वैदिक संस्कृति पालन करते हैं वैदिक सभ्यता में यही बात मानते हैं और वैदिक संस्कृति के बाहर भी सब लोग जो सभ्य है सभ्य आधा सभ्य तो इस प्रकार मर्यादा पालन करते हैं तो स्वभाव से उनका स्वभाव से माता और पिता छोटे बच्चे को पालन पोषण करते हैं और विशेषकर पुत्रों बड़े होने के पश्चात माता पिता उनका उनकी वृद्धावस्था में वो बड़े होकर पुत्रों और वृद्ध माता पिता की सेवा करते हैं वो शब्दों भिन्न है माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं और बड़े पुत्रों वृद्ध माता पिता की सेवा करते हैं देखिए भिन्न शब्दों है तो आजकल कलयुग का प्रभाव से भारत में भी वो आदर्श व्यवहार जो हम देखते हैं श्री राम जी का चरित्र में और भगवान कृष्ण का चरित्र में भगवान कृष्ण और बलराम जब वृंदावन से मथुरा चले गए और कंस को वध करने के पश्चात कृष्ण और बलराम देवकी और वासुदेव को बोलते हैं कि सब पुत्रों एक ही वचन कहते हैं कि सब पुत्रों का मुख्य कर्तव्य है वृद्ध माता पिता की सेवा करना हम अभी तक आपकी सेवा नहीं कर पाए परिस्थिति के अनुसार तो इस प्रकार उन्होंने कहा एक बात है कि यदि कोई पुत्र घर से निकल जाते हैं संन्यास लेने के लिए, भगवान का अनुसंधान करने के लिए, तो उनका कर्तव्य घर वापस नहीं आना, वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करना। यदि उस प्रकार करेगा वो उत्तम सेवा, वृद्ध माता पिता बहुत कठिनाई में होते हुए भी पुत्र का अभाव से, पुत्र का अनुपस्थिति से, वो माता पिता की उत्तम सेवा करते हैं वो पुत्र, क्योंकि जो घर त्याग करके संन्यास ग्रहण करते हैं और जो शुद्ध भक्ति करते हैं, तो वो पुत्र उत्तम सेवा करते हैं, क्योंकि वो पुत्र की भक्ति का प्रभाव से, भगवान की कृपा से, पूर्व कम से कम छोटा पीढ़ी के पूर्वज की मुक्ति होती है और जो भविष्य में भी आएंगे वही वंश में उनकी मुक्ति साधित होती है। एक पुत्र की तीव्र भक्ति से, उसके अलावा साधारण नियम है कि वृद्ध माता पिता की सेवा करने है। एक और उपाय है वर्णाश्रम समाज में कि वृद्ध माता पिता वानप्रस्थ होते हैं और घर से बाहर जाते हैं, गृह त्याग करते हैं, एक पुण्य क्षेत्र में असहाय जैसे पूरी तरह भगवान के ऊपर निर्भर करके निवास करते हैं, या वानप्रस्थ का मतलब वन जंगल में रहना और पूरी तरह भगवान के ऊपर निर्भर करना, या वानप्रस्थ जीवन इस प्रकार भी हो सकते कि वृद्ध माता और पिता घर से निकल जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और कुछ दिन के बाद वापस आते हैं और कुछ दिन घर में रहते हैं, फिर बाहर जाते हैं, या घर में रहते हैं परंतु उन सांसारिक विषयों में भाग नहीं लेते हैं, तो केवल भगवान का भजन करते हैं और इस प्रकार अंते नारायण स्मृति, जीवन की परम संसिद्धि, अंतिम काल में भगवान नारायण कृष्ण का स्मरण करने, उसलिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो इस प्रकार वैदिक संस्कृति में पूरी व्यवस्था इसलिए है भगवान की भक्ति करना, स्वकर्मणार्थम अभ्याच सिद्धिं विन्दति मानवाः। शिल प्रभुपाद ने कहा कि वानाश्रम समाज साइंटिफिकली अरेंज्ड, वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित है, जिससे सब जो वो वैदिक समाज में कार्य करते हैं, जो भाग लेते हैं, सब तो केवल भाग लेने से विष्णु भक्ति में प्रगत होते हैं, क्योंकि वर्णाश्रम समाज का केंद्र बिंदु, दैव वर्णाश्रम समाज का केंद्र बिंदु विष्णु भक्ति ही है। वर्णाश्रम आचरावता पुरुष ने परफ पुमान विष्णु आराध्य थे पंथा नान्य तत्थोष कारणम। विशेषकर समाज में जो नेता है, आध्यात्मिक नेता ब्राह्मणों और व्यवहारिक भौतिक नेताओं क्षत्रियों का मुख्य कर्तव्य है, प्रजाओं को भगवान की भक्ति में नियुक्त करना। केवल काम करना, अपना धर्म पालन करना तो पूरा नहीं होता है यदि भगवान की सेवा भावना से नहीं होती है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि चारिवानाश्रम में यदि कृष्ण नहीं भजे स्वकाम करते सही रौरवे परे माजे, तो यदि सब लोग समाज में अपना काम अच्छी तरह करते हैं परंतु कृष्ण का भजन नहीं करते हैं तो स्वकाम करने से क्या फल मिलेगा? नरकवास। दैववान आश्रम होना चाहिए। दैववान आश्रम किस प्रकार दैववान आश्रम में जीवन बीतना चाहिए? रामायण महाभारत ये श्रीमद् भागवत से सीखना चाहिए। वो माता पिता का आदेश पालन करना का प्रतीक है श्री राम। श्री राम धर्म का मूर्ति है, मूर्तिमान धर्म श्री राम है। धर्म बहुत सूक्ष्म हो सकता है तो किसी विशेष अवस्था में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो उसको अच्छी तरह समझना कठिन हो सकता है। किम कर्म किम अकर्म इति कवयो पियत्र मोहितः, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस मामला में कवयो विद्वान जन भी मोहित हो सकते। जैसे श्री राम का वनवास करना तो ऐसा लगता है कि राम जो आदेश मिले वनवास करना यदि वो दशरथ का आज्ञा लंघन करके वनवास नहीं किया तो वो धर्म हो सकता, क्योंकि दशरथ भी वो नहीं चाहते थे और सब अयोध्यावासी के अलावा नहीं चाहते थे कि श्री राम अयोध्या से जंगल जाएंगे। परंतु सब महान ब्राह्मण दशरथ भी प्रयास किए श्री राम को उनका मन परिवर्तन करना, परंतु श्री राम अपना धर्म में स्थित हुए और जो भी सब महान ऋषि बोलते थे तो सबको नम्रता से श्री राम यथार्थ उत्तर दिए और उसके बाद एक ऋषि नास्तिकवाद बोलते थे और इस प्रकार प्रयास किया जिससे श्री राम नहीं जाएंगे जंगल। तो बोलते हैं कि ये धर्म क्या है, आप धर्म के लिए आप जंगल जाते हैं तो ये धर्म क्या है, सब काल्पनिक है, धर्म छोड़ दो और यहाँ अयोध्या वापस जाओ। कौन ऋषि था किसी का याद है? जाबली। तो राम भी उनका मन समझे, बोलते हैं कि हाँ मुझे मालूम है कि आप नास्तिक नहीं लेकिन ऐसा बोलते हैं मुझसे प्रेम प्रीति करने से, परंतु मेरा धर्म है वनवास करना। अर्जुन भी युद्ध करने के पहले नयोच्य इति गोविंद उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अर्जुन बहुत तर्क करके कृष्ण को बताया कि मैंने बहुत युद्ध किया था मेरा पूरा जीवन में, ये बार युद्ध करना अधर्म होगा। और अर्जुन जो कहते हैं तो सामान्य विचार से सही है, गुरुजन भीष्म द्रोणा प्रमुखता का वध करना धर्म के विरुद्ध है, उनको आक्रमण करना मौखिक आक्रमण करना भी पाप होते हैं। और वास्तविक वो शास्त्र लेके आक्रमण करना प्रयास करना उनको वध करना अधर्म होते हैं। और इस युद्ध काल इस युद्ध का फल होगा पूरा क्षत्रिय जाति का विनाश होगा, फिर उत्तम श्रेणी की महिला आरक्षित होंगे और उसका फल होगा वर्ण संकर। और इस प्रकार अर्जुन बहुत योग्य वचन करके प्रयास किया भगवान कृष्ण को बताना कि युद्ध करना ठीक नहीं है इसी अवस्था में। और जब हम सर्वप्रथम वो प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं और अर्जुन जो कहते हैं हम सब उसको सही है सहमत होते हैं, परंतु कृष्ण का जवाब था क्या तो क्या हो गया क्लाइबम क्लीब क्लाइबम अस्मकम पार्थ क्यों ऐसे बोलते हैं पंडित जन पंडित जैसे बात बोलते हो परंतु तुम कुछ नहीं जानते हो। फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि जीव अविनाशी है, केवल शरीर विनाशी होते हैं, और यदि शरीर की हत्या होती है शरीरी की हत्या नहीं होती है। तो अर्जुन ये सब जानते थे पहले से। अर्जुन तो बाल्यकाल में सब ऋषियों के बीच में रहते थे और 12 साल जंगल में थे युधिष्ठिर के साथ, और युधिष्ठिर का मनोरंजन था सब ऋषि मुनि से धार्मिक कथा श्रवण करना। तो अर्जुन भी सुने, अर्जुन परम धार्मिक थे, उर्वशी का प्रस्ताव अस्वीकार किया, परम धार्मिक थे। कौन संसार में है जो परम सुंदरी उर्वशी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे? अर्जुन के अलावा परम धार्मिक थे। और जो अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को बोलते जो बोले तो धार्मिक विचार जैसे लगते है, परंतु भगवान कृष्ण उत्तर में बोले कि नहीं 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 पूरा गलत, जो सब कुछ जो तुम बोलते हो सब मूर्खता है। तो कैसे कैसे अर्जुन बोले कि शिष्य स्थे हंग शादी मांग थोंग प्रबंधम, जो आप बोलते हैं कि जो आप बोलते हैं कि सब कुछ जो मैं बोलता हूँ वो मूर्खता है, लेकिन मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि कैसे वो मूर्खता है मुझे समझ नहीं आता। तो इसलिए आप गुरु के रूप में मुझको शिक्षा प्रदान करो। और भगवान कृष्ण सूक्ष्म आध्यात्मिक ज्ञान अर्जुन को बताएं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, क्या करना चाहिए। हम जीव होते हुए भी, जीव जो पूरा आध्यात्मिक है जो भौतिक पदार्थों से भिन्न है। अपरयमतस्त्वन्यां प्रकृति प्रकृति विधि में पराम भौतिक प्रकृति है, अष्टभाग्य भौतिक प्रकृति, और उससे भिन्न है जीव जीवभूत। फिर भी जीव जब तक भौतिक प्रकृति से लिप्त होते हैं, युक्त होते हैं, वो लिप्त होना वो भी मायक है। परंतु जैसे ही है, जब तक हम भौतिक संसार में है तब तक धर्म के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए, और शास्त्र के अनुसार हम सब मर्यादा पालन करना चाहिए। मर्यादा जिसमें एक अनिवार्य रीति है कि कनिष्ठ जन वरिष्ठ जन की सेवा करते हैं। एक बार अमेरिका में एक नारी देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद के शिष्यों, श्रील प्रभुपाद कितना आदर से श्रील प्रभुपाद की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो अमेरिकन जीवन शैली और अमेरिकन जीवन रीति के विरुद्ध है। क्योंकि अमेरिका में ऐसा है, ऐसा लोग ऐसे सोचते हैं कि सब समान ही है, और किसी व्यक्ति दूसरा व्यक्ति की पूजा नहीं करेंगे। तो वो नारी श्रील प्रभुपाद को बोले कि आपके शिष्य वो आप तुम टू ये तीनों शब्दों अंग्रेजी भाषा में नहीं है, यू एक शब्द है, क्योंकि सब समान ही है उनका विचार में। तो थोड़ा नाराज हुए, बोले कि आपके शिष्यों आपकी पूजा करते हैं। प्रॉब्लम है, हाँ जैसे मैं मेरे गुरु महाराज की पूजा करता हूँ। श्रील प्रभुपाद का विचार में जो पूरा धार्मिक वैदिक आध्यात्मिक विचार है कि ऐसा करने चाहिए, और वो नारी का विचार में जो धर्म से बहुत दूर है, जो धर्म के पूरा विपरीत है, तो ऐसे नहीं करने चाहिए। तो भारत में हम जो प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करना, हमारा प्रचार करने का फल बहुत होते हैं पाश्चात्य देशों से, क्योंकि कलयुग का प्रभाव, बॉलीवुड इत्यादि काली का प्रभाव बहुत होते हुए भी आज तक भारत में प्राचीन वैदिक संस्कृति जैसे तैसे चलती रहती है, और कि गुरु की सेवा करनी चाहिए, वृद्ध माता पिता की सेवा। वृद्ध माता पिता उसका मतलब नहीं है कि जब तक वे वृद्ध नहीं है तब तक उनकी कुछ भी सेवा नहीं करनी चाहिए, उसका मतलब नहीं है। तो ये सब भारतीय लोग तो स्वभाव से ग्रहण कर सकते हैं, और पश्चिमी लोग तो बहुत कष्ट से ग्रहण कर करते हैं या ग्रहण नहीं करते हैं। और ऐसे हम देखते हैं कि पाश्चात्य देश के भक्तों तो तत्व ज्ञान जो भगवद गीता में है, श्रीमद् भागवत में है, उसको ग्रहण करते हैं, परंतु उस सांस्कृतिक विधान जो है उसको बहुत आपत्ति करके ग्रहण करते या ग्रहण नहीं करते, वो बहुत बड़ा बाधा है कृष्ण भक्ति में, क्योंकि कृष्ण भक्ति तो केवल तत्व ज्ञान से स्थापित नहीं है, संबंध ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, उसके अनुसार अभिधेय व्यवहारिक साधना करनी चाहिए। और वो साधना, वो कृष्ण भक्ति साधना जो है वो सामान्यतः वो वैदिक संस्कृति का आधारित समाज में करना है। इसलिए शास्त्र में वो हमारी वैष्णव शास्त्र में, वैष्णव धर्म शास्त्र में, हरि भक्ति विलास में, वो सब हम यही सब सामान्य धार्मिक सामाजिक रीति के बारे में हम विशेष अनुसंधान नहीं मिलते, जैसे वृद्ध माता पिता की सेवा करना, स्त्री धर्म पालन करना, श्रीमद् भागवत में आते हैं, परंतु ऐसा है कुछ भक्त जो पश्चिमी देश के बात है, जो भक्ति करने चाहते हैं परंतु वैदिक नियम विधि निषेध वो सब पालन करने में बहुत कठिनाई से लगते हैं। और केवल कठिन नहीं है, और कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि सब जीव एक ही है। शास्त्र में बताए भगवान कृष्ण कहते हैं पंडिता समदर्शिना और हम जानते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान का पहला सोपान यह है, पहली शिक्षा यही है कि शरीर और शरीर ही भिन्न है, और इसलिए पुरुष और स्त्री में भेद नहीं देखने चाहिए, दोनों समान, दोनों एक ही है, ऐसा कहते हैं। परंतु वैदिक शास्त्र में वो तत्व ज्ञान का दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि जीव जो पुरुष का शरीर वर्तमान काल में धारण करता है, और दूसरा जीव जो वर्तमान काल में स्त्री का शरीर धारण करता है, तो दोनों तत्व विचार से समस्तर है, परंतु वर्तमान स्थिति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, जैसे चीटा को हम आलिंगन नहीं करते हैं। और समझना चाहिए जो शास्त्र में है कि वो स्त्री पुरुष आकर्षण भव बंधन का मुख्य कारण है, पुंसस्त्रीय मिथुनी भाव में, और ऐसे कहने की हाँ हम समझते कि स्त्री और पुरुष में वो सब जीव है, इसलिए वो उसको समझने से हम स्त्री पुरुष का आकर्षण से मुक्त है, तो ऐसा नहीं होता। तो तत्व ज्ञान जो शास्त्र में है वो केवल जीव की परिस्थिति और भगवान की परिस्थिति और दोनों में वो संबंध जो है, प्रेम संबंध, सेवियर 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 सेवक भाव, वो संबंध वो है, और शास्त्र में भी ऐसा निर्देश है। तो कैसे ये भव संसार में जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे हम माया का प्रभाव से रक्षित हो सकते हैं, और जिस प्रकार धर्म पालन करने से भगवान संतुष्ट होंगे, जैसे ये श्लोक से हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड का सृष्टि का समय से यही रीति आती है कि पुत्रों पिता की सेवा करेंगे, कनिष्ठ वरिष्ठों की सेवा करेंगे, तो वो भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हम सब इतना भाव में लीन हो गया कि हम ऋषभ देव जैसे नग्न पूरा दुनिया में परिक्रमा करेंगे और हम यहाँ तहाँ मलमूत्र त्याग करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग है अवधूत बोलते हैं, जो अवधूत हो सकते हैं हो सकते हैं, ये सब के लिए नहीं है। जो धर्म और साधारण नीति साधारण व्यवहार के अतीत है, तो ऐसे परमहंस बहुत कम होते हैं। और ऐसे परमहंस भी स्त्री पुरुष मर्यादा पालन करते हैं और सभी वैदिक नियम पालन नहीं करके कम से कम वो विधि पालन करते हैं, जैसे गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज। तो समाज से थोड़ा दूर रहते थे और भौतिक भोग विलासी जन से बात नहीं करना चाहते थे, खाली भजन करने चाहते थे, परंतु स्त्री संग से दूर रहते थे। आदर्श वैरागी गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज, उनका मन में स्त्री भोग करने की इच्छा नहीं आ सकती, भौतिक भोग विलास की वासना से अतीत होते हुए भी। तो आदर्श साधु जीवन प्रकट किया और इसलिए स्त्रियों के साथ बात नहीं करते थे। तो स्त्रियों से बात करना संपूर्ण निषेध नहीं है, विशेषकर जो गृहस्थ तो अवश्य ही स्त्रियों से बात करेंगे, परंतु गृहस्थ जीवन में भी बहुत नियम रीति व्यवहार पालन करना चाहिए, यही वैदिक संस्कृति और सभ्यता है। और सब कुछ जो चलते है आधुनिक गलत फहमी के अनुसार वो असभ्यता ही है। इसलिए हम यहाँ नंदग्राम में ऐसा एक छोटा सा आदर्श नमूना सृष्टि करना चाहते हैं, किस प्रकार वास्तविक सभ्यता होने चाहिए। वो आधुनिक युग में सब कुछ जो चलते है स्वतंत्र नारी स्वतंत्रता का नाम से, और सब एक ही है, ये सब गलत फहमी जो चलते है उसके विरुद्ध हमारी आपत्ति है यहाँ व्यवहारिक रूप में, कि आपका समाज वो नरक के समान है और हम वैकुंठ में रहना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय में है। तो कैसे हम श्री कृष्ण का आश्रय में रह सकते हैं? श्री कृष्ण का आदेश पालन करने से, श्री कृष्ण के मुख्य दूत आधुनिक युग में श्रील प्रभुपाद का आदेश पालन करने से, और श्री कृष्ण जैसे चाहते हैं हम जीवन व्यतीत करते हैं, इस प्रकार हम श्री कृष्ण का आश्रय में रहते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न अगर हो अभी पूछिए।
प्रणाम गुरु महाराज। महाराज आपने बताया कि जैसे माता पिता की सेवा करना हर एक पुत्र का कर्तव्य है, तो आज हम इस्कॉन में भी देखते हैं इस्कॉन के जो भक्त है, जो इस्कॉन में भक्ति ग्रहण करते हैं, नए नए जुड़ते हैं, और उनके माता पिता भक्ति नहीं करते, मतलब एक तरह से हम बोलते हैं अभक्त है, तो वो लोग बताते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, वो अभक्त है, हमको उनसे हमारा नियम नियम सेट नहीं होता है, तो हम उनके साथ कैसे?
देवार्षी भूताप्ता नृणांग पितृणां न किं करोमि नयं रणि राजचराजं सर्वात्मनयः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कार्थम्। यही श्लोक प्रमाण है कि यदि एक व्यक्ति पूरी तरह शरणागत होते हैं भगवान मुकुंद की सेवा में, तो उनका कोई साधारण ऋण से बाधा नहीं है। देव ऋषि पितृ भूत आप्त से ऋणी नहीं है। यदि हम पूरी तरह समर्पित शरणागत होते हैं भगवान की सेवा में, वो शास्त्र प्रमाण ही है, लेकिन वो प्रमाण उठाकर वो कर्तव्य पालन नहीं करने के लिए और आलसी होने से वो कर्तव्य पालन नहीं करना, वो भी ठीक नहीं है। यदि हम रामानुज जैसे, श्रील प्रभुपाद जैसे वृद्ध पिता माता की सेवा नहीं करते, और रामानुज जो युवकाल में पत्नी को त्याग किया, यदि हम समाज के लिए उत्तम सेवा कर सकते हैं त्याग करने से, कृष्ण भक्ति प्रचार करने से, तो वो सामाजिक भौतिक नियम से हम बद्ध नहीं है, न ही तो कर्तव्य है। यदि माता पिता भक्त नहीं है तो क्या करना चाहिए? देखना पड़ेगा व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुसार। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।